Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe. श्री लाडली लाल की, श्री राधा कुशल बिहारी जी महाराज की, श्री हंस गोपाल जी महाराज की, श्री दान बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। बैठिए, आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्ययुग के शुरुआत में 60,000 साल ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और सत्ययुग के अंत में दोबारा 60,000 साल तपस्या किया। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। कितना समय बीत गया सोचो आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 120,000 साल तक तपस्या किया। कितना संयम रहेगा उनके अंदर। उनके पास आयु तो बहुत बड़ी है लेकिन 120,000 साल भी उतने ही स्पीड से चलते हैं, वो उतना ही कालावधि है जो आज का 120,000 साल का कालावधि है। यानी कि ये मत समझना कि उनका अगर 120,000 है तो वो बहुत फास्ट चलेगा और हमारा बहुत स्लो चलेगा। समय की गति सेम रहती है। तो 60,000 साल के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला भगवान का, तो कैसे लगा होगा उनको। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, सेवा में लग गए। फिर सत्ययुग का समय समाप्त होने को आया, फिर 60,000 साल तप किया। भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है और फिर भी तपस्या के बल से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ये सोचना भी गलत है। तो तपस्या से कोई चमत्कार करने से प्रकट नहीं होते, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। और प्रकट भी होते हैं तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, हमारे बुलावे प्रकट नहीं होते। उनका प्रकट होना उनकी कृपा है, इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने यहाँ पर प्रवेश दिया। कल हमने बताया था ना, दो ही ऐसे व्यक्ति हैं हमारी जानकारी में जिन्होंने अपने पद को, ऊंचा पद को छोड़कर कोई नीचा पद, एक तरह से नीचा पद ले लिया है। पत्थर बने हैं वो, चार शिखर वाले पत्थर, वर्ष्यानो, जहाँ पर बहुत ही सुंदर पर्वतों की चोटियाँ हैं, वहाँ पर उनका निवास है। और ऐसे लिखा है कि वो पत्थर बने हुए हैं, लेकिन जैसे भगवान आते हैं, राधा रानी आती है, तो वो मक्खन की तरह मुलायम बन जाते हैं, ताकि उनके चरणों में कोई कष्ट न हो, उनके चरणों को सुख मिले। और फिर उस भाव में दो प्रकार के भाव हैं, एक तो भाव विभोर होकर पिघल जाते हैं और एक उनके लिए पिघल जाते हैं ताकि उनके चरणों को सुख मिले। तो ये चार पर्वत जो है ना, ये केवल हैं, इसी से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। इतने बड़े व्यक्ति, इतना नीचा पद लेकर सेवा कर रहे हैं। हम कैसे रहते, हमारा जो पद है वैसे क्या पूछते हैं, हमारे लायक क्या सेवा है, व्हाट इज इट फॉर मी, मैं क्या, मेरे जो डिग्री है, जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो मेरी उम्र है, जो मेरा सब कुछ है, उसके हिसाब से क्या सेवा है आपके पास। आप बोलेंगे सब्जी काटने की सेवा है, बोले वो तो नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट है क्या कुछ है ना। तो हमारा सारी सेवा जो है ना, वो सशर्त होती है। सशर्त का मतलब क्या होता है, कंडीशनल, एस्ट्रिक्स होता है, एस्ट्रिक्स ऊपर, कंडीशन अप्लाई। हम सेवा करेंगे लेकिन कंडीशन अप्लाई। और ब्रह्मा जी जो हमारे सबसे परम 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 पितामह हैं, वो यहाँ पर अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि सेवा के लिए कैसे भाव होना चाहिए, सेवा कैसे की जाती है। सेवा बहुत सारी होती है, लेकिन सेवा कैसे की जाती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या की जाती है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है कि सेवा हम कैसे कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं वो एक जगह पर है, कैसे कर रहे हैं इसको भगवान देखते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर ब्रह्मदेव होने पर भी पर्वत बन के खड़े हैं, पत्थर बन के खड़े हैं, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, अपने गंदे पैर लेकर चल रहे हैं, उनके सर पे चल रहे हैं, लेकिन वो हमारे ब्रह्मांड के नेता हमारे सामने एक आदर्श खड़ा कर रहे हैं कि सेवा भाव कैसे होना चाहिए और सेवा कैसे करनी चाहिए। और अभी नहीं कि भाई हमारी सेवा जब तक कृष्ण भगवान यहाँ होंगे तब तक रहेगी, जब वो चले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। नहीं, वो तो चले गए 5000 साल पहले, अंतर्धान हो गए, लेकिन हम यहीं रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो नित्य लीला करते रहते हैं, इसलिए इनका भी स्थान चिरंतन है यहाँ पर। इतने सारे चिन्ह जो आए ना इस पर्वत पर, कारण क्या है कि भगवान जब लीला करते थे तो ये पिघलते थे, और वो पिघले हुए पर्वत पर जो भी हाथ लगाया, हाथ धोया, पोंछा, जो भी है, सारा चिन्ह बना हुआ है। इसलिए हम लोग प्रणाम करते हैं, नीचे से प्रणाम करते हैं, आपके ऊपर चढ़ने के पहले ही दंडवत करते हैं, क्योंकि वो हमारे परम 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 पितामह है, वो सबसे सबके पिताजी हैं, वो यहाँ पर पर्वत बन के खड़े हैं, इसलिए प्रणाम करके आना चाहिए। और दूसरी एक बात है, यहाँ पर ऊपर आने के बाद में कोई भोग लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति के सर पे चढ़ के आ रहे हैं और फिर यहाँ पर टिकिया खा रहे हैं और कोई तमाशा देख रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, आनंद लेने के लिए ऊपर नहीं आते, केवल महारानी के दर्शन करने के लिए आना है बस। सेवा करने के लिए आ सकते हो, दर्शन करने के लिए आ सकते हो, लेकिन ऊपर आकर कोई भोग लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो बहुत भयंकर अपराध हो जाएगा। यहाँ पर आकर किसी का अपराध करेंगे, किसी का गुनाह करेंगे, किसी को चोट पहुँचाएंगे या भोग लेंगे, तो फिर बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए बरसाने में आना है तो भाव से आना है, नहीं तो बहुत लोग आते हैं, हजारों करोड़ लोग आते हैं, सुना है 9 करोड़ लोग आते हैं, लेकिन संतजनों के कृपा से वो आशीर्वाद प्राप्त होता है कि कैसे आना है, कैसे आने से पूरा लाभ होगा। बच्चे को लेकर आ रहे हैं, कितना भाग्य है, लेकिन संस्कार मिलेंगे तो आगे जाके भी वो वैसे ही आएगा, लाभ लेते हुए आएगा, लाभ देते हुए जाएगा, है ना। जैसे हमारे परम पितामह यहाँ पर विराजमान है, तो हम ब्रह्मा जी के बड़े ऋणी हैं, क्योंकि वो इतने बड़े पद पर होने पर भी इतना नम्र सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। और आप लोगों को, हम लोगों को पता नहीं है कि पत्थर होने का मतलब क्या होता है। पत्थर होने का मतलब है कि आप हिल नहीं सकते हो, फिर आपके ऊपर लोग जो चाहे करेंगे, बंदर भी करेगा और आप भी करोगे, सब लोग जो चाहे करेंगे उसके ऊपर, है ना, थूकेंगे, क्या क्या करेंगे। एक जगह भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन एक जगह बाकी लोग भी कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ सहना पड़ता है। और हूं की चू नहीं करना है, इंतजार करना है, भगवान आएंगे, लीला करेंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा ये सब हमको सिखाते हैं, समझाते हैं कि धाम में कैसे रहना चाहिए। शहर में तो लोग भोग के लिए रहते हैं, लेकिन धाम में भगवान के सुख के लिए रहते हैं। वही भाव इस मंदिर का है। ये मंदिर जो बना है ना, वो भी एक सेवा का परम आदर्श है। ये दानगढ़ है, दानगढ़ वो भानुगढ़ है, वो भानुगढ़ है, ये दानगढ़ है, आगे विलासगढ़ है, फिर आगे मानगढ़ है। तो दानगढ़ पे भगवान प्रेम का दान मांगते हैं राधा रानी से, रति रति का दान मांगते हैं। तो वो इसलिए दानगढ़ नाम पड़ा है, इसलिए दान बिहारी जी हैं थोड़े आगे, उसका आप दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ जब हम बैठे हुए हैं, यहाँ की विशेष कथा ऐसी है कि जयपुर के राजा थे, शायद उनका नाम वहाँ पर लिखा है भूल में, क्या नाम है, माधव सिंह, वो फोटो है, फोटो लगा गए। उनका ऐसा मन हुआ कि राधा रानी का मंदिर पुराना होता जा रहा है। आप बैठिए, सुनिए, पाँच मिनट के लिए आनंद आएगा आपको, बैठिए। तो मंदिर बनाना चाहिए, नया पुराना मंदिर हो गया है, तो श्री जी के लिए मंदिर बनाना चाहिए। राजा थे वो, उनको लगा दानगढ़ में जगह खाली है तो उसमें बनाया जाए बढ़िया मंदिर। तो फिर उन्होंने, आप सोच सकते हैं, 400 साल पहले कोई क्रेन वगैरह नहीं था उस समय, जेसीबी ऐसा कुछ नहीं था, कोई हाथी घोड़े आकर सामान डालते थे ऊपर, पत्थर है, गधा है, हाँ डालते थे ऊपर। इस मंदिर को आप जितना गहराई से देखोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि इतना मुश्किल से बनाया हुआ उसको, वो भी पहाड़ के ऊपर। देखो एक एक काम देखो इसका, उधर देखो खिड़की की ओर देखो, छरों का देखो, वो खंबे पे देखो, एंट्रेंस पे देखो, ऊपर देखो, फिर भी कुछ मेंटेनेंस नहीं है, ऐसा ही रखा है, 400 साल के बाद भी दिखाई पड़ रहा है, कैसा महीन काम किया। अंदर जाके देखो, उधर एक सूरज का एक किरण आती है अंदर से, उधर सूरज सूरज का दर्शन है, उधर सूरज का भी चेहरा है, उधर किरण भी आती है रंगी बिरंगी। अंदर का माहौल देखो आप, देखते जाओ, तुलसी वृंदावन को देखो कैसे बना है, तुलसी वृंदावन के बाहर नज़ारा देखो, एक जगह हाथी है, एक जगह घोड़े हैं, ऐसे क्या क्या बना के रखा है। और 400 साल के बाद में आपके सामने ये दर्शन मिल रहा है आपको, उस समय कैसे होगा जब उद्घाटन करने का समय आया होगा। ऐसे राजा ने बहुत समय तक मेहनत करके, कारीगरों को लगा के, अपने प्रेम से, निर्देश में मंदिर बनाया। क्यों बनाया? कि राधा रानी आएगी और रहेगी यहाँ पर, है ना, सेवा होगी राधा रानी की। कितने भाव से बनाया? उसी उन्हीं के भाव से बनाया कि राधा रानी के लिए ही बनाया। लेकिन लेकिन बड़ा बड़ा लेकिन है, बड़ा लेकिन, और लेकिन यह है कि जब कल राधा रानी को यहाँ लाना है, स्थापना करना है और उद्घाटन करना है, तो श्री जी महारानी स्वप्न में आती है और बोलती है कि मैं तो नहीं आऊँगी, वो मेरा निजी घर है, मेरे पिताजी का महल है, मैं तो नहीं आऊँगी, वो मैं वहीं रहूँगी। तो समझो आप उस जगह पर होते, राजा के जगह पर, क्या बोलते आप, सोचो क्या बोलते आप, हाँ नहीं नहीं समझो, आप राजा होते, आपने इतने मेहनत करके मंदिर बनाया होता और आपको सपने में बोल रही है कि मैं नहीं आऊंगी, हाँ हाँ प्रार्थना करेंगे, बहुत बढ़िया भक्त हैं आप, इतना नम्रता से बोल रहे हैं। हम उनके जगह होते हैं, हम बोलते हैं पहले क्यों नहीं बोला, इतना मेहनत करवाया, उस दिन सपने में याद है ना जब मैं सामान ला के रखा उधर, तो इतनी मेहनत नहीं करता मैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इतना सारा समय लगाने के बाद में बताया जा रहा है ऐन मौके पे कि नहीं आऊंगी, कितनी चोट पहनते हृदय को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि बनाया था आपके खुशी के लिए। अटैचमेंट हमारे किसके साथ में है? आपके खुशी के साथ में। आप खुश रहें इसलिए सब बनाया जा रहा है, और अगर आप वहां रहने में खुश है तो हमारी खुशी भी उसी में है। हमारे मेहनत को कौन पूछता है? हु केयर्स फॉर आवर एफर्ट्स। अगर आपकी खुशी उसमें है तो हमारी भी खुशी उसमें है। ये भाव है आपका, राधा रानी के भाव से बनाया मंदिर है। राधा रानी नहीं आई है फिर भी राधा रानी के भाव से ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो इन्हीं के भाव से बनाया गया है, और राजा के भाव को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग देखो जरा सा कुछ मेहनत करते हैं, जो कुछ फंक्शन अरेंज करने हैं और वो फंक्शन कैंसिल हो जाता है, कितना गुस्सा करते हैं। अरे क्या इतना कार्ड छपवाया, इतना इनविटेशन दिया, इतना किया, तो फूड खाने का ऑर्डर दिया, डेकोरेशन को बोल दिया, इतना कर दिया और फंक्शन कैंसिल हो गया, तो किसी के डेथ हो गए समझो और कैंसिल हो गया शादी, तो कितना दुखी हो जाते हैं हम लोग, परेशान हो जाते हैं। बाप रे, यहाँ पर तो एक शादी तो हम आसानी से कर सकते हैं, ये बनाने का काम देखो कितना बढ़िया काम है। ये इतनी सारी मेहनत करने के बाद में उनको बताया जा रहा है, इसलिए एक गोल्डन वाक्य है कि सेवा किस प्रकार की है उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, सेवा भाव पर आसक्ति रखनी चाहिए। सेवा करनी है इस पर आसक्ति, मुझे मृदंग बजाने की सेवा अच्छी लगती है, मैं गा नहीं सकता, या मुझे गाना अच्छा लगता है मृदंग नहीं अच्छा लगता, या मुझे केवल आप तैयारी करो मुझे तड़का लगाना अच्छा लगता है, मैं तड़का लगाने को आ जाऊँगा, काट के आप रखो, ये हमारा स्टाइल है। हम लोग कैसे सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है वही मैं करूँगा, सब में मैं हूँ, मुझे अच्छा लगना चाहिए तब मैं करूँगा, बढ़िया से बढ़िया काम करूँगा लेकिन वो मुझे अच्छा लगेगा तब करूँगा। लेकिन ब्रजवासी लोग ऐसा नहीं करते हैं, ब्रजवासी लोग वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, और वो भी ऐसा नहीं कि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे तो अच्छा है ना, विन विन सिचुएशन हो गया ना, वैसा नहीं है वो। आपको अच्छा लगे मुझे कष्ट हो तो चलेगा, मैं कुचल भी जाऊं तो चलेगा, आपको अच्छा लग रहा है ना, फाइन। राजा का भाव ऐसा ही है, इतना बड़ा राजा, ऐश्वर्य संपन्न राजा होने के बाद भी वो हृदय उसका भाव ब्रजवासी का है, वो यही सोच रहे हैं कि श्री जी के लिए बनाया था, और अगर श्री जी की खुशी वहां रहने में है तो कोई बात नहीं, मंजूर है हमें, कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं, इतना सा वेस्ट हो गया है इसलिए भी दर्द नहीं। ये जो मंदिर है ना, उस दिव्य भावना का प्रतीक है, राजा की दिव्य भावना का। हाँ, मंदिर ठाकुर जी का है लेकिन भाव जो है ना यहाँ का प्रधान, वो राजा का है। जिस भाव से राजा ने लालायित है वो भाव हमको प्रेरित कर रहा है कि हमें भी भगवान की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए। हम बहुत बार योजना बनाते हैं बहुत कुछ करने के लिए लेकिन वो फेल हो जाता है, हम क्या बोलेंगे, चलो वो आज से करेंगे नहीं, बंद करेंगे। जैसे पहले डांस किया हमने किधर और लोगों ने तारीफ नहीं किया उसका डांस का, हम क्या करेंगे, अगले साल डांस करेंगे नहीं। ये हमारा भाव है, लेकिन सही भाव क्या होना चाहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना, वो उनका काम ही कहना है, बड़ी हम उनसे डिपेंड हैं कि वो क्या कहेंगे तो ऐसे हम करेंगे। हम तो कर किसके लिए रहे हैं, उसके लिए करते रहेंगे, फिर कोई गाली देंगे, कोई फूल बरसाएंगे, कोई तारीफ करेंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन हम जिनके लिए नाच रहे हैं उनके लिए नाचते रहेंगे। जब तक वो देख रहे हैं हमको कोई परवाह नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों का काम ही बोलना है, और वो भी ऐसा बोलना है एकदम उल्टा, ये एक बोलेगा तो दूसरा उल्टा बोलेगा, वही सब्जी है ये बोलेगा क्या सब्जी बनी है, क्या बकवास बनी है, एक ही साथ में बोलेगा उसी सब्जी को, ये दुनिया का स्वभाव है। लेकिन भक्तों को कैसा होना चाहिए, सेवा से आसक्त होना चाहिए, किस प्रकार की सेवा है उस पर आसक्त नहीं होना चाहिए, सेवा सेवा मिलनी चाहिए बस, चपरासी की हो या राजा की सेवा हो, सेवा मिलनी चाहिए बस, सेवा होनी चाहिए और सेवा में लगाते रहना चाहिए, बस वही हमारी आसक्ति है, वो होना चाहिए। ये तो कसौटी है पूरी। अल्टीमेटली सेवा बड़ी और छोटी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं बनता है। सेवा किस प्रकार से की गई है, किस कृतज्ञता के साथ की गई है, किस धन्यवाद के साथ की गई है, किस तकलीफों को उठा के की गई है, धन्यवाद फिर भी दे रहे हैं, वो जो भाव है ना वो भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए जब भी हम इस मंदिर की बारीक काम को देखते हैं ना, राजा का और अधिक गौरव सामने आता है। इतने प्रेम से बनाया, व्यर्थ नहीं गया। राधा रानी ने मंदिर में शायद वहां से यहां प्रवेश नहीं किया होगा, लेकिन सारी सेवा स्वीकार की उनकी, सारा भाव स्वीकार किया है। दैट इज सक्सेस। बाहर से क्या हुआ है उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। सेवा स्वीकार किया। जैसे ब्राह्मण की पत्नियां थी ना, उनका बहुत दिल था कि कृष्ण बलराम को गले लगाएं, लेकिन वो तो ब्राह्मण की पत्नियां थी और कैसे इनको जाके गले मिलेंगे। तो भगवान ने क्या किया पता है आपको? भगवान ने हृदय में जाके उनको आलिंगन दिया, सबको, एक एक को। हमारे कृष्ण कवि कर्णापुर है ना, आनंद वृंदावन चुंब में लिखते हैं कि हर एक ब्राह्मण पत्नी को भगवान ने हृदय में जाके आलिंगन दिया है। बाहर से नहीं मिला आलिंगन, लेकिन भगवान ने हृदय से दिया। भगवान ना बड़े भाव के भूखे हैं, हर चीज भाव से करते हैं। हम सब हर चीज भार से करते हैं, भगवान हर चीज भाव से करते हैं। लेते भी हैं और देते भी, सब भाव से करते हैं। इसलिए आप गरीब से गरीब भी होंगे ना, डोंट वरी, भगवान आपके भाव स्वीकार कर रहे हैं। आप रुकी सुखी खिला सकते हो, ले रहे हो, चने दबा रहे दे रहे हो, ले रहे हैं, कोई पंच पकवान दे रहे हैं लेते हैं, क्योंकि वो चने, ना चने ले रहे हैं ना पंच पकवान ले रहे हैं, वो तो आपका भाव ले रहे हैं, भाव के लिए बैठे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब जो गरीब है, जो ऐश्वर्य वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। और जो अमीर है बहुत, उसके पास बहुत कुछ देने के लिए, उसको ज़्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ना अमीरी की अमीर वस्तु, ना गरीबी की गरीब वस्तु वो लेने में बैठे हुए हैं। वो तो दोनों चीज़ों का भाव लेने के लिए बैठे हैं, दोनों का भाव का आस्वादन करते हैं वो। और हम भी ऐसे होते हैं, किसी ने हमको 5,000 का गिफ्ट लाके दिया, लेकिन कुछ हेतु से दिया, कुछ आगे काम बनेगा, कुछ नौकरी लगेगा मेरे बेटे को, तो आप भी समझ जाते हो कि बहुत कीमती गिफ्ट दिया है लेकिन मज़ा नहीं आया कुछ। और किसी ने आके 5 रुपये का गिफ्ट दिया बड़े प्रेम से, जैसे ब्रजवासी होते हैं ना बेचारे, रोटी खिला देते हैं आपको प्रेम से, आपको इतना आनंद आता है उसके अंदर कि ये रोटी तो 5 करोड़ के बराबर है, तो कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो हम भी इस बात को समझते हैं, इंसान होकर भी, तो भगवान तो हमारे जिनके अंश हैं, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। अगर आत्मा के अंदर इतनी सेंसिटिविटी है तो परमात्मा के अंदर कितनी सेंसिटिविटी होगी, कितनी संवेदनशीलता होगी, यही इंपॉर्टेंट बात है। राजा बहुत बड़े भक्त थे, वो निराश नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे मैंने की हुई सेवा कभी वेस्ट नहीं होगी, कभी व्यर्थ नहीं होगी। लेने वाले तो भाव को लेते हैं, बिल्डिंग तो भी गिर जाएगा कुछ समय के बाद, नष्ट हो जाएगा, समय के प्रभाव से क्या बचेगा, लेकिन भाव बचेगा, भाव निरंतर होता है, बाकी सब चीज़ खत्म हो जाती है। भाव जो है ना वो बना रहता है, भाव चिरंतन है, भाव इज इटर्नल। और भाव से की हुई जो चीज़ें हैं ना, वो भगवान के अक्षय खाते में जमा हो जाती है, भगवान कभी भूलते नहीं उसको। गोपियों के पास क्या था, लेकिन भगवान ने क्या बोला कि मैं आपके भाव को प्रतिसाद नहीं दे सकता, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपके भाव के अगेंस्ट दे सकता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, भगवान जो सबके दाता हैं, सब देने वाले हैं, सब उसकी उनकी है, सब उनका चीज़ है, सबके स्वामी वो हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं आपको दे नहीं सकता, आप जो दे रहे हो मुझे उसके बदले में मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। ये भगवान का भाव है। भगवान ही बोल रहे, हेलो एक लोक में जाके रहो आप, मैं तो आपको एक लोक भेज देता हूँ, प्राप्ति सिद्धि देता हूँ, जाओ। नहीं बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि जानते हैं कि मैंने जो इनसे प्रेम प्राप्त किया है वो मैं एक लोक भी इनको देकर उसका बदला नहीं चुका सकता। भगवान ये नम्र है, भगवान को गर्व नहीं है कि एक लोक फेंक दिया आपके मुंह पे, जाओ एंजॉय करो, आपने प्रेम किया ना मुझ पर, जाओ ये लोक आपको दिया है मजा करो, ऐसा नहीं है। भगवान नम्रता से बोल रहे हैं कि आप ना आपके प्रेम भाव में ही समाधानी रहो, संतुष्ट रहो, मैं कुछ दे नहीं सकता। ऐसे लोगों को भगवान अपने आप को अर्पण कर देते हैं, खुद को उनका बना देते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते थे, वासुदेव दत्त मैं इनकी प्रॉपर्टी हूं, ये मुझे कहीं बाजार में बेच सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं। कौन थे वो? बड़े बेचारे ब्राह्मण थे वो। लेकिन भगवान जो है ना वो दिल के भूखे हैं, तो राजा अमीर है इसलिए उनको ऐसा स्वीकार किया, ऐसे नहीं, अमीर हो या गरीब भगवान भाव के भूखे हैं और भाव स्वीकार करते रहते हैं। तो यहाँ की ये सुंदर लीला है, मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है यहाँ पर राजा के बारे में सोच के, क्योंकि राजा लोग अक्सर कैसे होते हैं, बहुत गर्विष्ट होते हैं, बहुत बड़ा गर्व होता है धन का, अधिकार का, पद का, हाँ सौंदर्य का, रानियों का, घोड़े हाथी सब दर्द, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खाना खाते हैं। तो अक्सर राजा लोग गर्विष्ठ होते हैं, बहुत नम्रता बहुत दूर की बात है उनके लिए। लेकिन राजा होकर इतना ऐश्वर्य होकर अगर वो नम्रता बनाए रख सकता है तो आचार्य जन कहते हैं कि वो भगवान की कृपा है। सार कुछ ऐश्वर्य होने के बाद भी अगर वो दैन्य बना सकता है, बना ये रख सकता है, यू कैन मेंटेन ह्यूमिलिटी इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑपुलेंसेस, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मर्सी ऑफ राधा रानी। जब ऐसा होता है, जो अक्सर नहीं होता है, जब ऐसा होता है तो वो राधा कृपा ही मानी जाती है। तो कृपा किसको मिल गई उसका मतलब क्या है, ये सब कुछ होने पर भी उस पर दैन्य है, नम्रता है। और ऐसे अनंत भक्त लोग यहाँ मिलते हैं, सब कुछ होने पर भी वो नम्रता को बनाए रखते हैं, ये जानते हुए कि सब कुछ उनका दिया हुआ है, गर्व करने के लिए कुछ नहीं यहाँ पर, सब किराए का धन है, हाँ उधार लिया हुआ है सब। और भगवान भी उनके शिरोमणि हैं, वो कैसे हैं, सब कुछ जो दुनिया को दान देते हैं, दुनिया चलाते हैं उनके धन के ऊपर, यहाँ पर आकर दान मांगते हैं, प्रेम का दान मांगते हैं। प्रेम भी उन्हीं से आता है, प्रेम के सागर भी वही है, लेकिन फिर भी आकर अपने भक्तों से प्रेम मांगते हैं, ये उनकी भी विशेषता है। इसलिए भगवान भी भगवान होने पर भी यहाँ पर सखी बनकर खड़े हैं, उधर चुंदरी ओढ़ के, कोई परेशानी नहीं उनको, क्या बना के रखा है मुझे, देखो इनसे प्रेम किया तो देखो क्या बना के, क्या हालत बना दिया मेरी, हाँ कोल्लू का बैल बना दिया मुझे, ऐसे नहीं बोलते वो, उन्हें आनंद आता है ये सब करने में। भक्तों के सामने नीचा होने के लिए उनको मजा आता है बहुत, भक्तों के सामने निम्न बनने के लिए बड़ा आनंद आता है उनको, हाँ। तो ये दान बिहारी का दर्शन है, वहां पर वो राधा रानी जो है वो कृष्ण है, वो कृष्ण जो है वो राधा रानी है। तो आप लोग अभी साखरीकोर जाएंगे, हाँ ले जाएंगे उनको। साखरीकोर में कैसा है, दो पर्वत ऐसे मिलते हैं, एक पर्वत ऐसा है एक पर्वत ऐसा है, और बीच में केवल एक व्यक्ति एक दिशा में एक ही बार जा सकता है, नो टू वे ट्रैफिक, और वो भी दिशा भी एक भी फिक्स होती है, या तो इधर या तो उधर, दोनों तरफ नहीं जा सकते। वहाँ पर बरसाने से राधा रानी गोपियाँ अपना मटका लेकर आती है, वहाँ से कृष्ण आके उनको रोक देते हैं, कहते हैं कि ये हमारे इलाके से जा रहे हो, वो यहाँ से जाके बेचोगे वो पैसा बनाओगे तो यहाँ से जाने का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रास्ते से आप चले, हमारी प्रॉपर्टी में से आप गुजरे, वो कैसा होता है फॉरेन में, प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना, खाली जगह है, कोई कुछ काम नहीं है, लेकिन मेरी जगह पे आना नहीं है आपको, यहाँ से गुजरना भी नहीं है आपको, जाएंगे तो पकड़ेंगे और दंड करेंगे आपको। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी जगह है और आप यहाँ से जाकर अपना बिजनेस करते हो तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो वो क्या बोल रही है, अरे तुम्हारे पिताजी ना गरीब थे। कौन? राधा रानी कृष्ण को बोल रही है। और मेरे बाबा जो है पिताजी, वो तुम्हारे बाबा के फ्रेंड है, तो तुम्हारी स्थिति को देखते हुए मेरे पिताजी ने तुम्हारे बाबा को नंदगांव का राज्य दे दिया। बोले तुम्हें राजा बन जा। तुम जो राजा राजा की बात कर रहे हो ना, वो मेरे पिताजी का किराए का दिया हुआ राज्य है। बोरोड किंगमैनशिप। तुम इतने इतरा रहे हो मेरे ऊपर, ये हमारा ही एरिया है, हमारे राज्य में खड़े हो और इतना इतरा रहे हो। हाँ, तुम्हारा राजदंड जो पिताजी का है वो हमारे पिताजी ने दिया हुआ है, ऐसे बातचीत चल रही है। और बोले सब ये बातें सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, कर दे दो, टैक्स दे दो। वो भी आर्गूमेंट करते हैं बहुत सारा। हाँ, बाद में क्या होता है ना, ये बात करते करते हमारे चालाक कृष्ण जो है ना, वो अपने डंडा से राधा रानी का मटका फोड़ देते। आतंक बोलते हैं उसको। प्रेम का आतंक। फिर मटका फोड़ देते हैं तो मटका गिर जाता है नीचे, तो राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है। देखो आप एक तो मुंह से कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, अभी आप मटका तोड़ने पर उतर आए, मटका तोड़ दिया, इतना कीमती मक्खन बनाया हुआ, इतना प्रेम से बनाया हुआ, बेचना था, फिर धन लाना था, गायों को खिलाना था, धन का चारा, वो मटका ही तोड़ दिया, पूरा जमीन पे गिरा दिया, अभी क्या करें उसको। तो बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर ललिता जैसे आप सामने आ जाती है, डांटने लगती है। तो रोज चलता ही, एवरी डे रोज का, हम लोग क्या बोलते हैं बॉम्बे में, रोज का नाटक है ये, एवरी डे हैपनिंग। लेकिन राधा रानी और कृष्ण को बड़ा आनंद आता है इसका। बहुत बहस करते हैं रोज, अलग अलग टाइप का। एक दिन क्या बोलते हैं कि वो कैसे होते हैं ना, मटका टूट गया ना कीजिए, तुरंत चाट लिया अपने हाथ से खाने लगे। पूरा खा लिया सब लोग ने मिलकर, सब सखियां देख रही हैं, दुख परेशान हो रही है, लेकिन वो खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। खा लिया फिर उधर ही हाथ पहुंच रहे हैं। उधर निशान बन गया उसका। कभी कभी उल्टा होता है, कभी कभी सखियां हावी हो जाती हैं और कृष्ण को ना अरेस्ट कर लेती है, उसका फेटा उतार लेती है। कभी ये जीतते कभी वो जीतते हैं। जब वो हावी हो जाते गोपियाँ ना, तो कृष्ण का फेटा उतार देती है। कृष्ण को ऐसा हाथ मरोड़ के ना घसीट के ले जाते हैं। जब घसीट के लेके जाते ना, तो उनका जो फेटा है ना, वो छूटा हुआ वो ऐसा पीछे आ जाता है, तो फेटा जो है ना उसका भी चिन्ह बन जाता है। उधर कई चिन्ह हैं पर्वत के ऊपर, एक चिकना पर्वत है, चिकना पत्थर, उस पर वो मटका गिरा था। आज भी बहुत चिकना है, बहुत स्लिपरी है, सफेद रंग का है, बाकी सब सांवले रंग के है, बीच में सफेद रंग का एक पत्थर है, उधर मटका फूटा था। उसके बाजू में हाथ पोछे हुए चिन्ह है, उसके बाजू में लंबा एक चिन्ह है लाइन, जहाँ वो फेटा उनका खींच के ले गए थे उनको बांध के। एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, उनको ना अरेस्ट कर दिया उन्होंने। एक बार क्या बोला, ये रोज का झगड़ा, इनको सबक सिखाते हैं, कितना देर सहन करेंगे, है ना। गरीब आदमी होगा तो कितना दिन सहन करेगा, एक दिन तो उठाएगा अपना डंडा। तो अरे डंडा किधर लाया नहीं, क्या रह गया महेश कमरे में, कोई बात नहीं। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि इनको ना अभी आज एक ट्रिक कर दे, ट्रिक। और ट्रिक क्या है कि आते ही मक्खन खिला देंगे इनको, बहस करेंगे नहीं, आते ही बोलेंगे लाओ दोना लेके आओ और खा लो। तो वो आए इधर डंडा लेके आए ऐसे करके, और बहस करने के मूड में थे, तो तुरंत सखियां बोली कि दोना लेके आओ, तुरंत मक्खन खिला देंगे। हाथ में खिला देने नहीं, हाथ में से इतना महंगा, इतना मतलब कीमती, मूल्यवान, प्रेशियस गिर जाएगा, तो फिर दोना में हो तो अब अच्छी तरह खा सकते हैं। उस समय पे सब कदम के पेड़ पे दोना अपने आप आया करते थे, रेडीमेड कप्स ऑन द ट्री। अभी हम लोग उसको लेके दबाते हैं मोल्ड में और फिर देते हैं दोना, वो रेडीमेड। वो एक बार क्या हुआ था ना, कदम के पेड़ों ने मिलकर मीटिंग किया था एक बार, कि ये पत्ते तोड़ते हैं फिर उसको लकड़ी लगा कर ऐसा पूरा दोना बनाते हैं, क्यों ना हम अपने आप से दोना बना के उनको दे दें, पेड़ का सेवा भाव है। तो पेड़ों ने अपने आप ही वो दोना बनाना शुरू कर दिया, रेडीमेड। क्यों मेहनत करें उसको उतारें और उसको मोड़ें, उसको ऐसे करें वैसे करें, दोना तो कदम के पेड़ पर दोना बनते थे। तो सब लोग इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि पता नहीं सूरज कहाँ से आज उगा है, सूरज का उदय कहाँ से हुआ आज, पश्चिम से हुआ क्या, ये गोपियाँ ऐसे प्रेम से कैसे आ गई आज, बहुत बहस करती थी। चलो कोई बात नहीं, जाओ दोना लेके आते हैं और खा लेते हैं। तो दोना लेने के लिए चढ़े पेड़ पे, हम दोना तोड़ रहे हैं, सबकी चोटियाँ छूट गई और सब गोपियों ने सब ग्वाल बालों की चोटियाँ जो है ना बांध दिया, पूरा पेड़ों को बांध दिया पूरा, और वो अटक गए पूरे सब लोग, एक तरह से अरेस्ट हो गए, कैद हो गए। अभी उतरने की कोशिश करो तो सबका अटका हुआ है, सब तो चिल्ला रहे हैं, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सब गोपियां ताली पीट रही है, गुड गुड वेरी गुड, अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा होशियार बनते हो, हाँ बहुत ज्यादा आतंक करते हो, दंडता दिखाते हो, रहो अभी लटके हुए पेड़ के ऊपर और खाते रहो मक्खन खाली दोना में। सब अभी क्या होता है ना, संकट जब आता है ना, सब ग्वाल बाल किसको पुकारते हैं, कृष्णा बलराम बचा लो, कृष्ण बलराम बचा लो, उधर से आवाज आई मधुमंगल बचा लो, सीतामा बचा लो। अरे ये तो आवाज कभी आती नहीं थी, आज कैसे आई, जो हर समय बचाने वाले हैं वही पुकार रहे हैं, उनसे उम्मीद थी कि वो हमको बचा लें, लेकिन वही पुकार रहे हैं बचाओ बचाओ, ये क्या रहस्य है। तुम्हारे गुरुदेव ने यहाँ पर कहानी रोक दी और बोले जो सबका तारण हार है, जो हर समय ग्वाल बालों के दुख में उनको रक्षा करते हैं, जब भी पुकारा तब भी रक्षा किया, जो राक्षस आया तो रक्षा किया, हर चीज़ रक्षा किया, आज भी उनको ही पुकारा है और किसको नहीं पुकारा है, और आज वो ही बोल रहे हैं हमको बचाओ बचाओ, ये कैसे हो गया। यहाँ पर कहानी रोक दिया, साकने को पार करवाया, नीचे लेके गए और फिर पूछा क्या जवाब है मेरे प्रश्न का मेरे, तो किसी को पता नहीं। उसका उत्तर बताया उन्होंने, उसका उत्तर ये है कि प्रेम का प्रभाव इतना तेज है कि उस प्रेम की वजह से वो कृष्ण बलराम भी सबको तारण हार वा करने वाले भी असहाय हो जाते, इतना प्रेम है कि उस प्रेम के वजह से सब दुनिया को बचाने वाले, हर संकट में तारने वाले खुद असहाय हो जाते हैं और खुद भी पुकार कर रहे थे, वो भी पुकार रहे हैं कृष्ण बलराम, सब बाल बाल पुकार रहे हैं, सब सखियां ताली पीट रही हैं, ये बोलते हैं अभी कुछ तो बताओ उपाय कि यहीं पर लटके रहे जिंदगी भर, कुछ तो बताओ। तो बोलते हैं अभी एक ही शर्त है हमारी, कल हमारा जो है ना नायक हीरो जो ना हीरो राधे श्याम सीताराम बैठो, ये आपका जो हीरो है ना इसको सखी बन के आना है कल, अच्छी तरह चुंदी ओढ़ के आना है श्रृंगार करके,
5 मिनट
और माथे पे मटका धारण करके आना है, अच्छी तरह से घर का मक्खन उठा के, और सब लोगों को आना है और हम लोग सखा बन कर आएंगे, और डंडा लो यहाँ सब लेके आओ, हम डंडा तुम्हारा लेके आएंगे कल, और तुमसे टैक्स लेंगे और तुम्हारा मटका फोड़ेंगे, मंजूर है तो ही छोड़ देंगे आपको। हाँ बोला, अभी क्या बोलेंगे, छोड़ो भाई छोड़ो, जो भी बोलेगे वो मंजूर है। तो फिर छुड़वाया उनको, और अगले दिन फिर वही लोग आए सखी बनकर आए, घर से मक्खन मामा मम्मी से मक्खन लेके आए, मटके में डालकर ऐसे डोलते डोलते आए अच्छी तरह से, वहाँ से राधा रानी सखा बनकर आई और डंडा लेके गाली दिया, अच्छी तरह से रुका, उनसे बहस किया, मटका तोड़ा सबका। तो फिर क्या भगवान ने दिखाया, भगवान ने वही दिखाया कि मैं आपके हारने के लिए यहाँ पर आता हूँ। हाँ तो वो दर्शन दान बिहारी मंदिर में, दान बिहारी जी जो है ना वो राधा रानी है, कभी कभी आप अभी पता नहीं रोज करते कि नहीं, कभी देखेंगे ना गौर से तो दान बिहारी के गले में मंगलसूत्र होता है, उसी भाव से पहनाते हैं उनको, राधा रानी जो है वो स्वयं कृष्ण है, श्याम सुंदर जी हैं। तो ये साखरी कोर में हर रोज की लीला होती है, और ब्रह्मा जी पिघलते रहते हैं वहाँ पर, हमेशा पिघलते रहते हैं, रोज लीला को देखते हैं, चरणों की रज प्राप्त करते हैं, उनके चरणों को सुख देने के लिए पिघलते रहते हैं हमेशा। और आगे जाकर मान मंदिर है, राधा रानी रूठ जाती है, किसी किसी कारण, बहुत सारे कारण हैं, बहुत लंबा विषय है, कभी बताएंगे आपको अलग से। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब राधा रानी रूठती है तो कृष्ण कुछ भी करने को तैयार है, जो चाहे करने को, आप उपाय बताओ करने को तैयार। कभी मोर बनकर नाच रहे हैं, कभी सखी बनकर नाच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, चरण अश्रुओं से धो रहे हैं राधा रानी के, उस जगह पर लोट पोट हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हाँ, हमारे जयदेव गोस्वामी है ना, वो लिख रहे हैं गीत गोविंद, और गीत गोविंद में क्या लिख रहे हैं, वो मन घड़ंत बातें लिख रहे हैं, जो दर्शन उनको हो रहा है वो लिख रहे हैं। और दर्शन क्या हो रहा है कि राधा रानी रूठ गई है अभी किसी कारण से, और कृष्ण भगवान मना रहे हैं, ठीक है, मना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि जयदेव जी देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने भी सर रख लिया है राधा रानी के चरणों में, तो वो एकदम ऐसे हड़बड़ा गए देख कर, ऐसे कैसे हो सकता है, परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर अखिल ब्रह्मांडेश्वर, हाँ, परापर भगवान राधा रानी के चरणों पर अपना शीश रख रहे हैं, मोर मुकुट वाला शीश निकाल, मोर मुकुट निकाल दिया, वो भी रख दिया चरणों में, उनका जो सम्मान की चीज़ है वो रख दिया चरणों में, खुद का शीश रख दिया, रो रहे हैं, तो ये वो रुक गए, लिखना रुक गए, लिखने को रुक गए, वो लिख नहीं पाए आगे, उनको ये कबूल ही नहीं हुआ बात। स्नान करने गए, भगवान स्वयं जयदेव बनकर आए और आगे की कड़ी लिखा कि यस, भगवान ने राधा रानी के चरणों पर अपना सिर रखा, अश्रु बहाए, लोटपोट हुए, ये सब भगवान ने आके श्लोक पूरा कर दिया। और अपनी पत्नी से, उनकी मतलब जयदेव जी पत्नी पद्मावती, उनके हाथ से पूरा भोजन खाया और चले गए। फिर कुछ देर बाद जयदेव जी आए स्नान करके, बोले खाना खिलाओ, भूख लग रही है। बोले क्या बात है, अभी तो आके खाना खा के गए आप, मैं कभी आया, मैं तो कब का गया उधर, मैं चिंतन कर रहा हूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, बहुत देर स्नान करता रहा, अभी मैं आया, भूख लग रही है, खाना खिलाओ। बोले अभी तुम आए और भोजन करके चले गए, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। बोले उसके आगे क्या किया? बोला मैं, आप अंदर गए, कुछ किया आपने, कुछ लिखा, लेखन पूरा किया, फिर खाना खाया। अच्छा, अंदर गए, अपनी पोथी खोली जहाँ पर रखी थी, वो श्लोक मोतियों के अक्षर में पूरा किया गया था। देखो कैसे भगवान है हमारे। तो पद्मावती को देखकर वो रोने लगे, बोले पद्मावती कितनी भाग्यवान हो तुम, श्याम सुंदर जी स्वयं आपको दर्शन देके गए हैं और आपके हाथ का भोजन खा के गए, कितनी भाग्यवान हो। दोनों भाव विभोर होकर बेहोश हो गए उधर, पद्मावती और जयदेव जी। इस प्रकार से आगे वो लीला लिखते जाते हैं। वो तो ये मान मंदिर का लीला है, जहाँ पर राधा रानी केवल कृष्ण का प्रेम बढ़ाने के लिए ही मान करती हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। क्रोध में क्या होता है, हम लोग केंद्र स्थान में होते हैं, हमारा हित जो है, हमारा स्वार्थ है, हम हैं, मैं हूँ, वो केंद्र में होता है। लेकिन मान में जिस पर प्रेम कर रहे हो वो केंद्र में होता है, उसकी खुशी के लिए मान किया जाता है। लग तो रहा है कि रूठ रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, लेकिन उससे कृष्ण का उनके ऊपर प्रेम जो है ना, वो बढ़ते जाता है। और 8 प्रकार के भाव मिलकर प्रेम बनता है, उसमें एक है मान, रति भी है, स्नेह भी है, प्रेम भी है, भाव भी है, 8 प्रकार का भाव मिलकर प्रेम बनता है। उसमें का एक भाव है मान, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी समझ में आए तो काफ़ी है कि उनका मान जो है वो ठाकुर जी के आनंद के लिए होता है, हमारा मान खुद के अहम को बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए वो जब तक हमारा अहम है तब तक भगवान मिलो दूर है हमसे, इज वेरी मिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम अस। और अहम से मुक्त हो गया तो भगवान बिल्कुल निकट है उसके, उधर ही है जहाँ पर वो है। इसलिए ये जब तक अहम को नहीं छोड़ सकते हम लोग ना, तब तक भगवान भगवान की बातें तो एक कथा में रहेगी, सारी किताब में रहेगी और कथा में रहेगी बस, और कहीं पहुँचेंगे नहीं वो। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल कठिन बात है ये, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हमें अगर भजन करना है, हम लोग भजन का नाटक कर रहे हैं, संकल्प कर चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं, नाम धारण कर चुके हैं, तो हमको प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारे अहम को मिटा दो। गोपियाँ क्या बोलती है, अश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम, कुचल दो हमें आप, चलेगा जो मर्जी है करो लेकिन अपना बना लो, ठुकराओ मत, मतलब ठुकरा सकते हो शरीर से, मन से मत ठुकराओ, दिल से मत निकाल दो, दिल में रखो, बाहर ठुकरा चलेगा, अपमान हो जाए चलेगा, लेकिन अपना बनाए रखो, अपने चरण में रखो, सेवा में रखो। ऐसा अद्भुत धाम है ये, यहाँ पर यहाँ की लीला समझना मुश्किल है बहुत, लेकिन फिर भी संत लोग हमें समझाते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आता है। हर चीज़ जो है यहाँ की दिखने में एक है, भाव उसका अलग है, हर चीज़ को देखने में आपको अलग लगेगा, वाह चलो फोटो निकाला जाए, सेल्फी निकाला जाए, ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया चीज़ है, उसके पीछे का जो भाव है ना वो उससे करोड़ों गुना महत्वपूर्ण है। जो आत्मा को मजबूत बनाएगा आपके, जो भाव आप सुनेंगे तो आत्मा आपकी मजबूत बनेगी, पोषण होगा आत्मा का। उसके आगे एक स्थान है, उसका नाम है गहबर कुंड, यहाँ पर भी आप जाएंगे, जैसे ये चार शीश है ब्रह्मा के, तो वो गहबर कुंड है ना, वो ब्रह्मा की नाभि है, अम्बिलिकस ऑफ ब्रह्मा, गहबर कुंड जो भी मान मंदिर के नीचे है, वहाँ पर अपनी 64 गिने चुने सखियों के साथ राधा रानी डांस करती, स्नान करती है रोज, गंधर्वों को भी सुख देने वाला कुंड है, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कुंड है, मोक्ष देने वाला कुंड है, लेकिन ये उसका बेनिफिट नहीं है, मेन बेनिफिट है राधा रानी वहाँ रमण करती है अपने सखियों के साथ, और मोर कुटी जो ऊपर है ना जहाँ पर मोर नाचते हैं, वहाँ से सखा लोग लड्डू फेंकते हैं उनके ऊपर, डिस्टर्ब करते हैं उनको, देखो लड़कियाँ स्नान कर रही है तो हमारे मुंबई में अड्डा फेंकते हैं और टमाटर फेंकते हैं, यहाँ पर लड्डू फेंकते हैं प्रेम से, वो लीला वहाँ पर है। वहाँ पर ही मधुमंगल को एक बार पकड़ा गया था मक्खन चोरी में, फिर मधुमंगल ने बहुत चीख पुकार किया, भगवान ने आके नाटक किया, गोपियाँ डर गई, अरे ब्राह्मण को अपराध कर रहे हैं हम लोग, ब्राह्मण को पीट रहे हैं लड्डू के लिए, मक्खन चोरी के लिए, भगवान ने आके डरा दिया, अरे ब्राह्मण का बेटा है, जनेऊ तोड़ के सांप देगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ब्राह्मण के बच्चे को पीटते हो, तो बेचारे भोली भाली गोपियाँ डर गई, अभी बोलो उसको, पूछो संतुष्ट कैसे होगा, उसको संतुष्ट करने का उपाय करो अभी, क्या करे क्या करे, मुझे क्यों पूछते हो, उसको पूछो। तो उसके पास गए वो, तब तक ये अपना जो है ना, जब नीचे गिर कर पीट रहा था, पीट गया था वो, खड़ा हो गया ऐसे, तो बोले ब्राह्मण देवता क्या करें आपके लिए, उन्होंने कहा हरेक सखियां ढेर सारे लड्डू बना कर ले आना, और कैसे बनाना लड्डू आपको, इनका लड्डू ये रिपीट नहीं करेंगे, सब अलग अलग होने चाहिए। प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, सब भाग गए घर में, अलग अलग लड्डू बना के लेके आई, सब भोग लगाया उनको, और वो किनारे है ना वो जो गहवर कुंड है ना, उधर सिंहासन रखा हुआ है, उधर उनको बिठाया और भोग लगाया उनको, आरती पूजा किया, पाद पूजा किया, पादक शालन किया, बड़े रुबाब से खाया उन्होंने, वो भी बोले महाराज खाओ खाओ, साप मत दो। क्या डर दिया मैंने, भगवान ने क्या डरा दिया, इनका अपराध करोगे ना, अगर ये साप दोगे देंगे ना आपको, जिनकी 7 शादियां हो चुकी है ऐसे बुड्ढे से आपकी शादी होगी, ऐसा डरा दिया। जवान लड़कियां बेचारी वो कृष्ण से विवाह करना चाहती है, वो बोल रहे हैं कि 7 शादी किए हुए बुड्ढे से आपकी शादी होगी, इसे मुंह में दांत भी दिए होंगे, बोलो डर रहे हैं वो बेचारे, भोली भाली गोपियां हैं, जानते नहीं कि चालाक लोग उनको उल्लू बना रहे हैं, कि ये भोलापन तो उनका वो चीज है जो भगवान को अच्छी लगती है। तो मधुमंगल ने आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि 7 बीवी वाले बुड्ढा नहीं, तुम्हारे मन में जो है उसके साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा, आशीर्वाद दिया उसको, फिर चले गए। तो वो जगह है उधर, उसके आगे बिहार कुंड है, और बिहार कुंड में देखो बरसाना ऐसा एक धाम है, सब लोग पुकारने के लिए आते हैं, एवरीबॉडी, आप भी ऐसे मत जाना, पुकारते हुए जाना, हृदय से पुकारना, सब लोग पुकारते हैं, शंकर जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, सब देवता लोग आते हैं, अरे सब देवता भी ठीक है, वो तो उनको आना ही है ठाकुर जी को पुकारने के लिए, लेकिन स्वयं ठाकुर जी भी आते हैं पुकारने के लिए यहाँ पर, ऐसी जगह ही। तो शिव जी महाराज आए थे एक बार नीचे, हाँ, और उनको पता है यहाँ का पासवर्ड क्या है, वो है सखी बनना। कोई तो आदमी बन के आएगा ना उधर से ही बाहर, सखी बन के आना है। तो सखी का श्रृंगार कर रहे हैं, ड्रेस चेंज कर रहे हैं अपने। हम कैसे घर पे आते हैं ना, ऐसे ऑफिस में आते हैं, फिर वो ऑफिस का एक होता है चेंजिंग रूम, वहाँ जाके चेंज करते हैं नर्सिंग ड्रेस, हाउसकीपिंग ड्रेस चेंज करके फिर ड्यूटी पे जाते हैं। तो वैसे ही वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन कुछ जम नहीं रहा है उनको कुछ यश नहीं मिल रहा है उसमें। तो वो देख कर वहाँ पर गौरी जी प्रकट होती है, और गौरी जी कहते हैं आप पुरुषों को क्या मालूम श्रृंगार कैसे किया जाता है, हम करेंगे आपका श्रृंगार। तो गौरी जी आते ही उनके तेज से वहाँ पर गौर तेज फैल जाता है, इसलिए उसका नाम गौरी कुंड भी है, उस कुंड का नाम। तो वहां पर गौरी जी ने शिव जी का श्रृंगार किया सखी के रूप में, बहुत सुंदर श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार किया उनका। बोले अभी जाओ, अभी आप सही हो, अभी जाओ, अभी आप पुकार सकते हो। तो वो भी चले गए आगे पुकारने के लिए, और वो भी पीछे चली गई गौरी जी श्री जी को पुकारने के लिए। सुन लो टेर हमारी, ओ वृष भानु दुलारी, प्लीज हियर मी ओ वृष भानु दुलारी, ओ डियर डार्लिंग ऑफ वृष भानु महाराज, प्लीज लिसन टू मी, आई एम कॉलिंग यू, सुन लो करुणामयी पुकार सुनो। अब चले गए, तो वो कुंड बिहार कुंड है। ये समझने वाली बात है, दुनिया भर में मैनेजमेंट करते हैं शिव जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज, यहाँ पर कैसे आते हैं, दीन बनकर आते हैं। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम चाहे कहीं देश विदेश यहाँ के वहाँ के जो भी कुछ होंगे, यहाँ पर आना ना भिखारी बनकर आना है। प्लीज रिमेम्बर दिस, अगर कोई भी अहम लेके यहाँ पर आए ना ठुकराए जाओगे, लेकिन जब यहाँ पर आना है ना तो भिक्षुक बनकर आना है, याचक बन के आना है, पुकारने वाला बन के आना है। ये भी गारंटी नहीं कि पुकारेंगे और सुनेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आके पुकारा 5 मिनट हो गए अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला 5 मिनट हो गए, 5 मिनट 300 सेकेंड, ऐसा नहीं। पुकारते रहूंगा जवाब मिले या ना मिले, पुकारना हमारा काम है, जवाब देना उनकी मर्जी है, हम तो पुकारेंगे और पुकारते रहेंगे, पुकारते ही रहेंगे। श्री राधे श्री राधे पुकारा करेंगे, श्री राधे श्री राधे पुकारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। कोई गर्व नहीं, कोई कोई हेतु नहीं, कोई पर्पज नहीं, बस जवाब मिले ना मिले हम तो पुकारते रहेंगे, वही हमारा धर्म है। सब कुछ गर्व छोड़कर पुकारते रहेंगे। देवता लोग यही बता रहे हैं, इतना बड़ा काम करते हैं हम लोग, एक कंपनी के सीईओ बन गए तो कितना गर्व करते हैं, मैं एक कंपनी का सीईओ। और उनका काम देखेंगे तो वो उसके सामने बोलेंगे ये कंपनी का सीईओ, तो हंसेंगे आपको, कौन सी कंपनी है ये इसका सीईओ बन के इतना ऐड रहे हो, हाँ। वो ब्रह्मांड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक कंपनी का मैनेजमेंट, वो डूबने वाली कंपनी कुछ समय के बाद में समय के प्रभाव से जाएगी वो पानी में, हाँ। ये भाव है। और वो जो दोना ढूंढने गए थे ना, उसकी भी एक जगह है, उसका नाम है दोनी कुंड। एक है दोहनी, दूध धोने की जगह है, वृषभानु महाराज अपने गायों को उधर मिल्क करते हैं, मिल्किंग, इसलिए वो दोहनी कुंड। एक है दोना, दोना बनता है वहाँ पर पेड़ पे, कई पेड़ थे ऊपर, अभी ख़त्म हो गए सब, जिसपे दोना आते थे रेडीमेड, मेरे पास फोटो भी है उसका, रेडीमेड दोना पेड़ से निकला हुआ, बोलो। तो वहाँ पर वृषभानु महाराज अपनी लाखों गायों का दूध निकालते हैं, इतना बड़ा विशाल कुंड है। उस कुंड में आप लोग कैसा एक 5 लीटर का गैलन लेके आते हैं दूध रखने के लिए, 5 लीटर का, बोले 5 लीटर का दूध पीते हो कितने लोग घर पे, बोले 20 लोग हैं, इतना दूध तो लगता ही है। अरे इनके पास इतना बड़ा हौद है, हौद, हाँ, आपके ना वो कितने 10-15 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है उसके अंदर, इतना बड़ा गहरा विशाल कुंड है, एक कॉलोनी खड़ी हो सकती है, सृष्टि सेक्टर नंबर 2 पूरा एक कुंड है खाली। उधर क्या लीला है, उधर ना कभी कभी राधा रानी के पिताजी के गाय को दूध निकालने के लिए कृष्ण भगवान आ जाते हैं, मैं भी जरा मदद कर लो आपको। उनको क्या है ना, राधा रानी के आसपास में घुसना है, इसलिए उनको बहाना चाहिए। तो आ जाते हैं, बोले मैं दूध निकालता हूँ। बोला ठीक है निकाल लो। तो क्या करते पता है, राधा रानी भी देख रही है यार कितना बढ़िया दूध निकाल रहे, क्या एक्सपर्ट है। हाँ हाँ कर देख रहे, उसके मुंह पे धार डालते हैं। तो वहां की लीला है धोनी कुंड की, ऐसा है। बहुत सुंदर सुंदर लीला है भगवान की यहाँ पर। उधर आगे विलासगढ़ है, विलासगढ़ में भगवान हर प्रकार का विलास करते हैं, झूला झूलते हैं, खाना भोजन करते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, बजाते हैं, सोते हैं, विश्राम करते हैं, प्रेम की लीला करते हैं विलासगढ़। ऐसे ये चारगढ़ है, राधा रानी का धाम है। यहाँ श्री जी विहार करती हैं, स्वच्छंद विहार करती हैं। कोई राक्षस नहीं, कोई आतंक नहीं, कोई देवता नहीं, कोई ऐसा अनऑफिशियल ऑफिशियल आदमी नहीं, अपना ही सब घर का परिवार है। दिल खोल के लीला करते हैं, स्वच्छंद आनंदमय लीला। नरोत्तम जी क्या बोलते हैं, सदाई स्पुर का मोरा माने रूप लावण्य राशि आमिया पोड़ीचे खाशी हास पौरी हास संभाषण नरोत्तम दास कोए नित्य लीला सुख मोए सदाई स्पुरुक मोरा मोने। ये प्रेम में लीलाएं सदा मेरे मन में स्फूर्ति रहे, सदा मुझे उनकी याद आती रहे। चाहे मैं गांव में रहूं, शहर में रहूं, देश में रहूं, परदेश में रहूं, जहां पर भी रहूं, कीचड़ में रहूं, धन में रहूं, ऐश्वर्य में रहूं, मान सम्मान में रहूं या अपमान में रहूं, जहां पर भी जैसे भी रहूं, आपकी लीला मेरे मन में हमेशा याद आती रहे, यही मेरी एकमात्र बात है। तो जीवन सफल है। फिर शरीर कहाँ पर है, क्या फर्क पड़ता है। मन जिसका वृंदावन में है, उस शरीर कहीं भी रहे। नित्य लीला सुखमोय सदा ही स्फुरुक मोरा मन, यही प्रार्थना कर रही है। सेवा चाहिए हमको। हाँ नरोत्तम दास सेवा कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो सखी बनकर सेवा करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं। कहीं मैं उनका सहायक बनूं, कुछ उनको मांगे कुछ दे दूं, कुछ जरूरत है कर दूं पूरा, ये भाव से करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर जब करते हैं उसलिए करते हैं कि सेवा चाहिए हमको, सेवा में रखो, माया में मत रखो, सेवा में रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।